एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
आज हम एक ऐसे विचारक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके विचार आज की दुनिया को समझने के लिए शायद सबसे जरूरी हैं, यूर्गेन हैबरमास।
और इस मुश्किल सफर पर हमारी गाइड है जेम्स गॉर्डन फिनलेसन की किताब हैबरमास। देखिए, हैबरमास को पढ़ना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन फिनलेसन की ये किताब उनके मुश्किल विचारों को समझने का एक बेहतरीन दरवाजा खोलती है।
और ये विषय सिर्फ किताबी नहीं है, ये बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। आज हम अपने चारों तरफ देखते क्या है, सोशल मीडिया पर बस शोर है, राजनीतिक ध्रुवीकरण है, फेक न्यूज का बोलबाला।
हाँ, ऐसा लगता है जैसे हम एक दूसरे से ठीक से बात करने की काबिलियत ही खोते जा रहे हैं।
बिल्कुल, और यहीं पर हैबरमास की अहमियत समझ में आती है।
तो आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि जब समाज में पुरानी मान्यताएं, जो धार्मिक विश्वास थे, वो कमजोर पड़ रहे हैं, तो हम सब मिलकर एक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण समाज की नींव वो कैसे रख सकते हैं।
और हैबरमास ने इसी बड़े सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इसका जवाब किसी महान नेता या किसी आसमानी किताब में नहीं खोजा।
तो फिर कहाँ खोजा?
हम इंसानों के बीच होने वाली सबसे आम चीज में, हमारी बातचीत में, हमारे संवाद में, ये सोचना ही अपने आप में क्रांतिकारी है।
तो चलिए इस सोच की गहराई में उतरते हैं। शुरू करने से पहले किताब के लेखक जेम्स गॉर्डन फिनलेसन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं।
हाँ, ये ससेक्स विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं और जर्मन फिलोसफी, खासतौर पर फ्रैंकफर्ट स्कूल और हैबरमास के सबसे बड़े जानकारों में से एक माने जाते हैं।
उनकी खासियत ये है कि वो सिर्फ हैबरमास को ही नहीं समझते, बल्कि कांट, हेगेल, मार्क्स जैसे विचारकों को भी बहुत गहराई से समझते हैं।
सही कहा, इससे वो हैबरमास के विचारों को एक बड़े कैनवस पर रखकर देख पाते हैं। मतलब वो हमें समझा पाते हैं कि हैबरमास किन विचारों से लड़ रहे थे और किन विचारों को आगे बढ़ा रहे थे।
और फिनलेसन की सबसे बड़ी खूबी जो इस किताब में साफ दिखती है वो ये है कि वो हैबरमास के बहुत मुश्किल और तकनीकी लेखन को सरल बना देते हैं।
पर उसकी गहराई को कम नहीं होने देते। वो एक आलोचक दोस्त की तरह हैं जो हैबरमास के प्रोजेक्ट से सहानुभूति तो रखते हैं, पर जहां जरूरत हो वहां मुश्किल सवाल पूछने से भी नहीं हिचकते।
सही। अब अगर किताब के मुख्य तर्क पर आएं, तो फिनलेसन कहते हैं कि हैबरमास का पूरा दार्शनिक प्रोजेक्ट असल में आधुनिकता का एक तरह से बचाव है।
हाँ, क्योंकि 20वीं सदी में कई विचारकों ने कहा कि ज्ञानोदय यानी एनलाइटनमेंट और तर्क ने हमें विनाश की ओर धकेलाए। हैबरमास इस निराशावादी सोच को चुनौती देते हैं। उनका मानना था कि आधुनिकता की परियोजना विफल नहीं हुई है,
वो बस अधूरी है।
बिल्कुल, और उस अधूरी परियोजना को पूरा करने का रास्ता वो तर्क में ही देखते हैं, लेकिन एक नए तरह के तर्क में।
अब तक तो दार्शनिक मानते थे कि तर्क किसी एक अकेले इंसान के दिमाग में होता है।
हैबरमास ने इस पूरी सोच को ही पलट दिया। उन्होंने कहा, नहीं, तर्क अकेले में नहीं बल्कि लोगों के बीच होने वाले संवाद में रहता है। इसी को वो कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी या संवादात्मक तर्कसंगतता कहते हैं।
यही उनका मास्टर आइडिया है, और फिनलेसन की किताब हमें दिखाती है कि कैसे हैबरमास इसी एक विचार की नींव पर नैतिकता, लोकतंत्र और समाज की आलोचना का एक पूरा महल खड़ा करते हैं।
ये किताब हमें हैबरमास की बौद्धिक यात्रा पर ले जाती है और दिखाती है कि उनके सारे विचार आपस में कैसे जुड़े हुए हैं।
तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। हैबरमास ने अपनी शुरुआत फ्रैंकफर्ट स्कूल से की, जहां उनके गुरु थे एडोनो और हॉर्कहाइमर जैसे विचारक।
उन्होंने उनसे आधुनिक समाज की आलोचना करना तो सीखा, लेकिन वो अपने गुरुओं की तरह पूरी तरह निराश नहीं थे। उन्हें लगता था कि कहीं ना कहीं उम्मीद बाकी है।
और इसी उम्मीद की तलाश में उन्होंने अपनी पहली बड़ी किताब लिखी, द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फीयर। इसमें उन्होंने 18वीं सदी के यूरोप को देखा और एक बहुत दिलचस्प चीज खोजी, बुर्जुआ पब्लिक स्फीयर।
ये कॉफी हाउस और सालून जैसी जगहें थीं जहां पहली बार आम नागरिक, व्यापारी और बुद्धिजीवी एक साथ आकर राजनीति और समाज के मुद्दों पर खुलकर बहस करते थे।
एक मिनट, तो क्या ये उस जमाने के ट्विटर स्पेस या क्लब हाउस जैसा कुछ था, जहां आपकी हैसियत से ज्यादा आपके तर्क की अहमियत थी?
बिल्कुल सही पकड़ा, वहां का आदर्श यही था, बेहतर तर्क की अदम्य शक्ति। मतलब अगर आपकी बात में दम है तो लोग सुनेंगे, चाहे आप कोई भी हो।
ये तो लोकतंत्र की आत्मा जैसी बात हुई।
हाँ, पर हैबरमास ने यह भी दिखाया कि कैसे 20वीं सदी आते आते मास मीडिया, विज्ञापन और पब्लिक रिलेशंस ने इस पब्लिक स्फीयर को तबाह कर दिया।
बहस की जगह हेरफेर ने ले ली और नागरिक की जगह उपभोक्ता ने। ये तो आज भी बिल्कुल सच लगता है। न्यूज चैनलों की डिबेट देखिए, वो बहस कम और तमाशा ज्यादा लगती हैं।
सही बात है। तो सिर्फ आलोचना करना तो काफी नहीं था, हैबरमास को एक मजबूत सकारात्मक आधार की जरूरत थी, और वो आधार उन्हें मिला भाषा के दर्शन में।
उन्होंने एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछा, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो असल में हम कर क्या रहे होते हैं?
ज्यादातर समय तो हम बहस कर रहे होते हैं।
हाँ, लेकिन हैबरमास कहते हैं कि जब हमारा इरादा किसी को धोखा देना या सिर्फ अपनी बात मनवाना नहीं बल्कि सच में एक दूसरे को समझना होता है, तो हमारी भाषा कुछ नियमों पर काम करती है।
इसे वो यूनिवर्सल प्रैग्मैटिक्स कहते हैं। उनका कहना है कि हम अनजाने में ही तीन दावे करते हैं, पहला कि जो हम कह रहे हैं वो सच है, दूसरा ये नैतिक रूप से सही है,
और तीसरा हम ये बात ईमानदारी से कह रहे हैं।
बिल्कुल। और हम ये भी मानकर चलते हैं कि अगर कोई इन दावों पर सवाल उठाए तो हम एक खुली बिना किसी दबाव वाली बातचीत में इन्हें सही साबित कर सकते हैं।
इसी काल्पनिक स्थिति को वो आइडियल स्पीच सिचुएशन या आदर्श संवाद की स्थिति कहते हैं, है ना?
हाँ, ये तर्क का एक ऐसा आधार बन जाता है जो किसी धर्म या परंपरा पर निर्भर नहीं है बल्कि सिर्फ मानवीय संवाद पर टिका है।
तो इस भाषाई नींव पर उन्होंने समाज का पूरा सिद्धांत खड़ा कर दिया, और यहीं हम उनकी सबसे मशहूर किताब द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन पर आते हैं।
यहाँ वो दो तरह के एक्शन यानी क्रियाओं में फर्क करते हैं। एक है इंस्ट्रूमेंटल एक्शन,
जिसका मकसद सिर्फ कोई लक्ष्य हासिल करना होता है, जैसे एक मैनेजर अपने कर्मचारी को आदेश देता है ताकि मुनाफा बढ़े। यहाँ आपसी समझ जरूरी नहीं, बस काम होना चाहिए।
और दूसरा है कम्युनिकेटिव एक्शन, जिसका मकसद ही आपसी समझ बनाना है, जैसे किसी मोहल्ले के लोग मिलकर ये तय करते हैं कि उनके पार्क का रखरखाव कैसे किया जाए।
यहाँ नतीजा उतना जरूरी नहीं जितना कि सबकी सहमति से उस नतीजे पर पहुंचना।
एकदम। और इसी से जुड़ी दो और बड़ी अवधारणाएं हैं, लाइफ वर्ल्ड यानी जीवन जगत और सिस्टम यानी व्यवस्था।
लाइफ वर्ल्ड सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है।
हाँ, पर इसका मतलब सरल है। ये हमारी रोजमर्रा की दुनिया है, परिवार, दोस्त, समुदाय, हमारी साझा मान्यताएं, हमारी संस्कृति। ये वो दुनिया है जहां हम आपसी समझ से जीते हैं।
और सिस्टम क्या है?
सिस्टम आधुनिक समाज के वो हिस्से हैं जो आपसी समझ से नहीं बल्कि अपने अलग तर्क से चलते हैं। इसके दो मुख्य रूप हैं, एक है अर्थव्यवस्था जो पैसे के तर्क पर चलती है,
और दूसरी है राज्य की नौकरशाही जो सत्ता और नियमों के तर्क पर चलती है।
ये दोनों अपनी जगह जरूरी हैं, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये सिस्टम हमारे लाइफ वर्ल्ड पर कब्जा करने लगते हैं।
इसी को हवामास आधुनिक समाज की सबसे बड़ी बीमारी कहते हैं, जीवन जगत का उपनिवेशीकरण।
बिल्कुल। जब पैसे और सत्ता का तर्क हमारे रिश्तों, हमारी कला, हमारी शिक्षा पर हावी होने लगता है, जब दोस्ती नेटवर्किंग बन जाती है, शिक्षा सिर्फ डिग्री और कला सिर्फ एक प्रोडक्ट,
यही आज के समाज में अकेलेपन और अर्थहीनता की भावना की जड़ है। ये तो बहुत ही सटीक विश्लेषण है।
हाँ, तो समाज में समस्या क्या है ये तो समझ आ गया।
लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहां सबके मूल्य और विश्वास इतने अलग हैं, हम ये कैसे तय करें कि नैतिक रूप से सही क्या है? क्या इसके लिए भी हैबरमास ने कोई रास्ता सुझाया?
हाँ, और ये उनके दर्शन का अगला पड़ाव है, डिस्कोर्स एथिक्स या विमर्श नैतिकता। उनका सिद्धांत बहुत शक्तिशाली और सरल है।
वो क्या है?
वो कहते हैं कि कोई भी नैतिक नियम तभी सही माना जाएगा जब उस नियम से प्रभावित होने वाले सभी लोग एक खुली और तर्कपूर्ण बहस में उसके नतीजों को स्वीकार कर सके।
तो ये कांट के विचार से अलग है, जहां एक व्यक्ति अकेले बैठकर तर्क से सही गलत का फैसला कर सकता था?
हाँ, हैबरमास कह रहे हैं कि नैतिकता कोई निजी मामला नहीं है, ये एक सार्वजनिक सामाजिक प्रक्रिया है। हमें असल में एक दूसरे से बात करनी होगी।
सही।
नैतिकता कमरे में बैठकर सोचने से नहीं बल्कि लोगों के बीच बैठकर बात करने से पैदा होती है, और यही विचार उन्हें उनके राजनीतिक दर्शन की ओर ले जाता है जो उनकी किताब बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स में मिलता है। वो पूछते हैं कि एक लोकतंत्र में कानून को वैध या जायज क्या चीज बनाती है।
ज्यादातर लोग तो यही कहेंगे कि बहुमत का शासन, जो पार्टी चुनाव जीतती है वो कानून बनाती है।
लेकिन हैबरमास इससे सहमत नहीं है। उनके लिए कानून सिर्फ सत्ता का खेल नहीं है, एक वैध कानून वो है जो सत्ता के तथ्य और तर्कसंगत स्वीकार्यता के आदर्श के बीच एक पुल बनाता है।
और इसके लिए वो विमर्शी लोकतंत्र का एक टू ट्रैक मॉडल देते हैं। ये टू ट्रैक मॉडल क्या है?
ट्रैक वन है अनौपचारिक पब्लिक स्फीयर, यानी हम और आप, नागरिक समाज, सामाजिक आंदोलन, मीडिया, यूनिवर्सिटीज, ये वो जगह है जहां सामाजिक समस्याओं पर बहस होती है, उनकी पहचान होती है और जनमत बनता है।
यह लोकतंत्र का दिल है जहां से ऊर्जा आती है।
बिल्कुल। और ट्रैक टू है औपचारिक प्रणाली, संसद, अदालतें, सरकार। इनका काम है कि वो ट्रैक वन में बने जनमत को सुने, उस पर तर्क वितर्क करें और उसे अच्छे तर्कसंगत कानूनों में बदलें।
तो एक स्वस्थ लोकतंत्र तभी काम करता है जब ट्रैक वन यानी नागरिक समाज मजबूत हो और ट्रैक टू यानी सत्ता पर लगातार असर डालता रहे।
एकदम सही। मतलब लोकतंत्र सिर्फ 5 साल में एक बार वोट देना नहीं है, बल्कि ये एक लगातार चलने वाली बातचीत है, और जब ये बातचीत बंद हो जाती है
तो लोकतंत्र खोखला हो जाता है।
बिल्कुल। और अपने बाद के सालों में हैबरमास ने इन विचारों को धर्म और वैश्वीकरण जैसे मुद्दों पर भी लागू किया। उन्होंने पोस्ट सेक्युलर सोसाइटी की बात की।
ये तो आज के भारत के लिए बहुत अहम बात लगती है। वो क्या कहते हैं, कैसे होगा ये संवाद?
वो कहते हैं कि दोनों तरफ से सीखने की प्रक्रिया की जरूरत है। धार्मिक नागरिकों को अपने विश्वासों को ऐसी भाषा में रखना सीखना होगा जिसे सब समझ सकें।
और धर्मनिरपेक्ष नागरिकों को भी ये मानना होगा कि धार्मिक परंपराओं में भी नैतिक ज्ञान का खजाना हो सकता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
हाँ, एक कट्टरता और आक्रामक धर्मनिरपेक्षता दोनों का एक तरह से जवाब है।
वाह, तो इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो कुछ बहुत बड़े और जरूरी संदेश निकल कर आते हैं। मेरे लिए पहला तो यही है कि तर्क मरा नहीं है, वो बस सामाजिक हो गया है।
और मेरे लिए सबसे बड़ा संदेश है आधुनिकता का निदान, जीवन जगत का उपनिवेशीकरण। ये शब्द हमें एक लेंस देता है ये देखने के लिए कि हमारे समाज में पैसा और सत्ता कैसे मानवीय रिश्तों को खोखला कर रहे हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, ये चेतावनी है।
और तीसरा, जो लोकतंत्र से जुड़ा है, वैधता का स्रोत विमर्श है। कोई कानून इसलिए सही नहीं है कि उसे किसी राजा ने बनाया है या बहुमत ने पास किया है, वो इसलिए सही है क्योंकि उस पर एक खुली और निष्पक्ष चर्चा में सब सहमत हो सके हैं।
सही कहा। पर इन विचारों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे देख सकते हैं? ये सिर्फ किताबी बातें तो नहीं है ना?
भेद होता है तो हम खुद से पूछ सकते हैं, मेरा मकसद क्या है? बहस जीतना जो कि इंस्ट्रूमेंटल एक्शन है, या रिश्ते को समझने के लिए बात करना जो कम्युनिकेटिव एक्शन है?
हाँ, सिर्फ ये एक सवाल पूरी बातचीत का रुख बदल सकता है। और दफ्तर के बारे में सोचिए, हैबरमास के विचार टॉप डाउन मैनेजमेंट की सीधी आलोचना है।
एक बेहतर टीम या कंपनी वो है जहाँ पद की ताकत के बजाय बेहतर तर्क की जीत होती है, जहाँ एक जूनियर सदस्य भी खुलकर अपनी बात रख सकता है और उसे सुना जाता है।
और मीडिया देखते हुए तो ये चश्मा लगाना बहुत जरूरी है। हम खुद से पूछ सकते हैं, क्या ये टीवी डिबेट एक पब्लिक स्फीयर बना रही है या ये सिर्फ टीआरपी के लिए एक तमाशा है?
और सामाजिक आंदोलनों को तो हैबरमास के विचारों से बहुत ताकत मिलती है, चाहे वो पर्यावरण के लिए आंदोलन हो या किसी अधिकार के लिए।
उनका असली काम जमीनी स्तर पर संवादात्मक शक्ति पैदा करना ही होता है, ताकि वो राज्य की प्रशासनिक शक्ति और बाजार की आर्थिक शक्ति को चुनौती दे सकें।
तो इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी सीख क्या है? एक ऐसे समय में जब लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, हैबरमास के विचार एक उम्मीद जगाते हैं। एक ऐसी उम्मीद जो किसी झूठे दिलासे पर नहीं, बल्कि तर्क और संवाद की ताकत पर टिकी है।
मेरे लिए सबसे बड़ी सीख यह है कि लोकतंत्र एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि एक बातचीत है। इसकी सेहत इस बात से नहीं तय होती कि कौन जीता या कौन हारा, बल्कि इस बात से तय होती है कि हम सब मिलकर अपने समाज के भविष्य पर कितनी अच्छी, कितनी तर्कपूर्ण और कितनी समावेशी बातचीत कर रहे हैं।
और अंत में शायद सबसे जरूरी बात जो हैबरमास हमें याद दिलाते हैं, एक बेहतर, ज्यादा तर्कसंगत और ज्यादा न्यायपूर्ण दुनिया की संभावना कहीं बाहर से नहीं आएगी। वो हमारे रोजमर्रा के संवाद, एक दूसरे को समझने की हमारी छोटी छोटी कोशिशों में ही छिपी हुई है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।